पेश है आज के मुख्य समाचार विशाली जैन के साथ। न्यू साउथ वेल्स में आज महामारी का सबसे भारी दिन दर्ज हुए 1400 से अधिक कोरोना मामले। भारत में दैनिक मामलों की संख्या में 3.7% की कमी। और खेल में सॉकरूज ने चीन को 3-0 से दी वर्ल्ड कप क्वालिफायर में शिकस्त। और अब खबरें विस्तार से। न्यू साउथ वेल्स ने आज स्थानीय रूप से अधिग्रहित नए 1431 कोविड-19 के मामले दर्ज किए हैं। राज्य में आज 12 लोगों की कोरोना के वजह से मृत्यु दर्ज की गई है। इनमें से सभी व्यक्ति 60 साल से ऊपर की उम्र के थे, सिवाय एक 30 के दशक की महिला के। इन महिला को टीका नहीं लगा था और इन्होंने दक्षिण पश्चिमी सिडनी के अपने घर में ही अंतिम सांस ली। संक्रमण का फैलाव क्षेत्रीय न्यू साउथ वेल्स में भी जारी है। सारे राज्य में ही कोरोना मामलों में बढ़त देखी गई है, जिसमें पश्चिम में दर्ज हुए 53 मामले और विल्कैनिया में दर्ज हुए 7 मामले शामिल हैं। प्रीमियर ग्लैडिस बेरेजिक्लिन का कहना है कि स्वास्थ्य अधिकारी मानते हैं कि कोरोना मामलों का शिखर अगले पखवाड़े में आ सकता है।
September is the month when we're asking everybody to get ready. When we hit the 80% double dose number, New South Wales looks forward to having our citizens enjoy international travel and also stepping up and welcoming thousands of Australians home who've been waiting to come home for a long time. And I'm having these conversations now with everybody so we can get used to what life is like in living with COVID. And again, I restate our position, which we stated from the outset. It is impossible to eliminate the Delta strain.
इसी बीच राज्य के मुख्य मनोवैज्ञानिक डॉक्टर मरे वाइट ने प्राइमरी स्कूल में जाने वाले बच्चों के परिवारों के लिए एक सलाह दी है। उनका कहना है कि लॉकडाउन का असर बच्चों पर भी उतना ही पड़ता है जितना कि बड़ों पर।
But children will all express stress differently, and they will very often express it indirectly. Some children will act out. Some will become clingy and very dependent. Others will withdraw. I think it's reasonable, if there's any kind of change in behaviour in your school-age children at this time, to assume that it's actually a statement of distress and take the opportunity to find out what's causing that distress.
उधर विक्टोरिया में भी आज 208 नए कोरोना मामले और एक मृत्यु दर्ज की गई है। राज्य में मौजूदा प्रकोप में ये सबसे अधिक संक्रमण संख्या है। 208 मामलों में से केवल 96 मामले ही मौजूदा प्रकोप से जुड़े पाए गए हैं। इस हफ्ते में राज्य में संक्रमण तेजी से बढ़ते देखने को मिल रहा है। राज्य अधिकारी पहले ही कह चुके हैं कि शून्य कोरोना मामलों की स्थिति फिलहाल वापस आती नहीं दिख रही है और साथ में यह भी चेताया गया है कि मामले अभी और बढ़ेंगे। राज्य में बच्चों के लिए खेल के मैदान वापस खोल दिए गए हैं और न्यू साउथ वेल्स के साथ सीमा प्रतिबंधों को और भी कड़ा कर दिया गया है। क्वींसलैंड की प्रीमियर अनास्तासिया पलाशे अपने उन बयानों का बचाव कर रही हैं जिनमें उन्होंने 12 साल से कम के बच्चों के लिए कोविड-19 के खतरे की बात कही थी। इस आयु वर्ग के बच्चों को फिलहाल टीके देने की कोई योजना नहीं है। सुश्री पलाशे जानना चाहती हैं कि अगर 70-80% टीकाकरण होने के बाद ऑस्ट्रेलिया अपनी सीमाएं खोलता है तो 12 साल से कम के बच्चों की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की जाएगी। फेडरल सरकार ने सुश्री पलाशे पर पलटवार करते हुए कहा है कि वे केवल जनता में डर फैलाना चाहती हैं। फेडरल लेबर ने भी उनके बयानों से दूरी बना ली है, लेकिन सुश्री पलाशे कहती हैं कि वे अब भी अपने बयान पर बरकरार हैं।
No, I think this is about protecting Queenslanders and having a conversation about what will we need to do. And you know, there's measures that other countries are putting in place. For example, if the Delta variant is going rampant through a particular region or a city, the children in primary school are wearing masks as a precaution.
इसी बीच क्वींसलैंड में कोई नया कोरोना मामला दर्ज नहीं किया गया है। यह तब आता है जब राज्य स्वास्थ्य सेवाएं न्यू साउथ वेल्स से आए 2 संक्रमित ट्रक ड्राइवरों के संपर्कों को ढूंढने में लगी हुई हैं। वहीं राज्य की मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी जीनेट यंग का कहना है कि वे तब तक राज्य सीमाएं नहीं खोलना चाहती जब तक क्वींसलैंड के हर योग्य व्यक्ति को कोरोना टीका प्राप्त नहीं हो जाता। ये पूछे जाने पर कि उनके लिए कितनी मृत्यु मान्य है, वो कितनी कोरोना मृत्यु के साथ कंफर्टेबल हैं, उन्होंने नाराजगी भरा उत्तर दिया कि
comfortable with, I'm a doctor. None. about 360. Come on. Can you please remember who I am? I stand up here every day, but ultimately I went into medicine to save lives. I'm not comfortable with any deaths that are preventable.
ऑस्ट्रेलियन मेडिकल एसोसिएशन ने चेताया है कि इस साल के आखिर में जब देश वापस खुलेगा तब बढ़ने वाले कोरोना मामलों के लिए राज्य और उपराज्यों की स्वास्थ्य सेवाएं तैयार नहीं हैं। प्राइम मिनिस्टर स्कॉट मॉरिसन राज्यों के प्रीमियर और मुख्यमंत्रियों को आज होने वाली राष्ट्रीय कैबिनेट मीटिंग में देश भर के अस्पतालों की कोरोना से निपटने की सक्षमता का ब्यौरा देंगे। एएमए अध्यक्ष उमर खुर्शीद ने राष्ट्रीय कैबिनेट से आग्रह किया है कि वह देश की अस्पताल व्यवस्था की क्षमता का आकलन करें।
To make sure that once we open up, that we don't see a disastrous reduction in the care available to Australians who are sick, simply as a result of increasing the risk of COVID in the community. The reality in public hospitals in Australia right now is that they are full, but we are worried about Australians who get heart attacks, who need surgery, who have a sore hip, who are going to miss out on care if we don't get the planning right.
और अब अंतर्राष्ट्रीय खबरें। न्यूजीलैंड में आज 28 नए कोविड 19 मामले दर्ज किए गए हैं। इनमें से एक वेलिंगटन और बाकी सभी ऑकलैंड में सामने आए हैं। इनमें से 25 मामले मौजूदा प्रकोप से जुड़े पाए गए हैं, जबकि 35% मामले संक्रमित होते हुए समुदाय में मौजूद थे। उधर अमेरिका के वरिष्ठ संक्रामक रोग विशेषज्ञों का मानना है कि अमेरिकी नागरिकों को कोरोना से पूर्ण रूप से सुरक्षित करने के लिए बहुत संभव है कि तीसरी बूस्टर डोज देनी ही पड़े। अमेरिका उन सभी नागरिकों के लिए जिन्हें फाइजर और मॉडर्ना के mRNA वैक्सीन प्राप्त हुए हैं बूस्टर डोज देने की तैयारी कर रहा है। ये खुराकें फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन से मंजूरी पाने के बाद दूसरी खुराक के 5 से 8 महीने के अंतराल पर दी जाएंगी। अमरीकी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एलर्जी एंड इन्फेक्शियस डिजीजेस के निदेशक डॉक्टर एंथनी फौची का कहना है कि उनके अपने अनुभव के अनुसार और इसराइल से आए साक्ष्यों के आधार पर कोरोना से दीर्घकालिक सुरक्षा के लिए ये बूस्टर डोज जरूरी है।
The reason I say that is that it's very clear when you give a prime and maybe a second shot as a boost, but give the immune system enough chance to mature in both affinity maturation and maturation of the B cell repertoire, it is entirely understandable why the results that I just reported from the Israeli boosters are so dramatic.
उधर अमेरिका के पूर्वी तट पर चक्रवर्ती तूफान आइडा के रहतिया प्रभावों से रिकॉर्ड वर्षा दर्ज की गई है, जिसमें 26 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। भारी बरसात, अचानक आई बाढ़ और तेज हवाओं ने न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी और पेनिसिल्वेनिया समेत पूरे इलाके में तबाही मचाई है। राष्ट्रीय मौसम विभाग के निदेशक लुई उचलेनी का कहना है कि दोनों प्राकृतिक और आदमकृत ताकतों ने आइडा के कमजोर तूफान, जिसने उसके मुख्य तूफान से 1,000 मील दूर तट को छुआ था, को भी विनाशकारी बना दिया है।
The record hourly rainfall rate for Central Park, New York City, records that have been kept very carefully, you know, all the way back into the last century. Right? We set that record, we broke that record on August 21st of this year for Henri of 1.94 inches. We just smashed that record on September 1st.
और अब खबरें भारत से। भारत में पिछले 24 घंटे में नए कोविड 19 मामलों में 3.7% की कमी देखी गई है। पिछले 24 घंटे में देश में 45,352 नए कोविड 19 मामले सामने आए हैं और 366 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। भारत में सक्रिय मामलों की कुल संख्या 3,99,778 है। उधर पिछले 24 घंटे में भारत में 74,84,333 कोरोना के टीके बांटे गए हैं और देश में अब तक कुल 67,09,59,968 कोरोना टीकों की खुराकें वितरित की गई हैं। भारतीय शिक्षा मंत्रालय के अधिकारियों ने कहा है कि देश भर में विद्यालयों में करीब 80% शिक्षकों एवं गैर शिक्षक कर्मियों ने कोविड 19 रोधी टीके की कम से कम पहली खुराक ले ली है। मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि देश भर में विद्यालयों को खोलने में जो विभिन्न कारक भूमिका निभाएंगे उनमें एक शिक्षकों का टीकाकरण भी होगा। भारतीय शिक्षा मंत्रालय ने मंगलवार को सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को सितंबर के दौरान सभी शिक्षकों एवं गैर शिक्षक कर्मियों के लिए टीकाकरण की पहली खुराक पूरा कराने के निर्देश दिए थे। और अब डॉलर का हाल। आज यानी शुक्रवार को ये खबर लिखे जाने तक एक ऑस्ट्रेलियाई डॉलर की भारतीय रुपयों में कीमत 54.04 रुपए और एक अमरीकी डॉलर की तुलना में कीमत 74 सेंट्स थी। और अब खबरें खेल के मैदान से। ऑस्ट्रेलिया की राष्ट्रीय फुटबॉल टीम सॉकरू ने विश्व कप क्वालिफायर मैच में चीन को 3-0 से हराकर अपनी सीधी नवी जीत दर्ज की है। इस जीत के साथ शुरुआती मैचों के बाद ऑस्ट्रेलिया ग्रुप बी के शीर्ष पर आ बैठा है। सॉकरू कोच ग्राहम आर्नोल्ड का कहना है कि टीम अब वियतनाम के खिलाफ हनोई में होने वाले मैच पर पूरी तरह से केंद्रित है।
With simple messaging and the boys are extremely fit and it's just a you know when you bring the family back together even though they've been away for quite a while and the Socceroo family the mateship of the boys is so crucial and important and I thought we were fantastic tonight.
और टेनिस में विश्व नंबर एक एश बार्टी डेनमार्क की क्लारा टॉसन के साथ एक रोमांचक खेल के बाद यूएस ओपन के तीसरे चरण में प्रवेश कर गई हैं। ऑस्ट्रेलिया की इस टेनिस दिग्गज ने किशोरी टॉसन पर 6-1 और 7-5 से बढ़त बनाते हुए जीत दर्ज की थी। और अंत में एक नज़र कल यानी शनिवार को देश के प्रमुख शहरों के मौसम के हाल पर। पर्थ में कल तेज धूप खिली रहेगी। यहां अधिकतम तापमान 19 जबकि न्यूनतम 5 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। एडिलेड में कल हल्की बौछार पड़ सकती है। यहां अधिकतम तापमान 15 जबकि न्यूनतम 7 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। मेलबर्न में भी कल छिटपुट बारिश के आसार हैं। यहां अधिकतम तापमान 15 जबकि न्यूनतम 10 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। देश की राजधानी कैनबरा में कल तेज बारिश का अनुमान लगाया जा रहा है। अधिकतम तापमान 15 जबकि न्यूनतम 9 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। सिडनी में कल दिन के साथ ही बारिश बढ़ने के आसार हैं। यहां अधिकतम तापमान 24 जबकि न्यूनतम 14 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान लगाया जा रहा है। ब्रिस्बेन में कल छिटपुट बारिश के आसार हैं। अधिकतम तापमान 23 जबकि न्यूनतम 14 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। डार्विन में कल सुबह बारिश पड़ने के आसार जताए गए हैं। अधिकतम तापमान 34 जबकि न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। भारत की राजधानी नई दिल्ली में कल बिजली के साथ बारिश की संभावना है। दिल्ली का अधिकतम तापमान 32 डिग्री जबकि न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। समाचार में आज इतना ही। नमस्कार।